वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब किताबे ज़िंदगी जिसको आप कह ले, उसको पढ़ने के लिए दिल मचल रहा, बेचैन है उसको सीखने के लिए? मैं तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस करती हूँ अपने दिल में हर थर्सडे को क्लास लेने से पहले, और बहुत खुशी का एहसास भी होता है कि कम से कम हफ्ते में 3 बार जब हम अल्लाह ताला की बात को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के कलाम को सीखते हैं, तो फिर एक दिन तो कम से कम ऐसा होना ही चाहिए कि हम उस ज़ात की बात करें कि जिसके ज़रिए से हमें इतना प्यारा दीन मिला। सबक यानी हमारा चल रहा है, किताब आपको मालूम है कि शुरू की है, लेकिन साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि इसको सिर्फ एक लाइफ हिस्ट्री समझ के ना पढ़ें, बल्कि हमारा ये पढ़ना जो है वो इस तरीके का हो कि अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन उसवा हसना भी बने। और इस किताब को मुंतखब करने की वजह भी यही है कि ये किताब उसवा हसना सिखाती है, यानी आपकी ज़िंदगी के अमली पहलुओं को उजागर करती है। तो बड़ी मोहब्बत से एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, खामोशी से अपनी खुशकिस्मती पे रश कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया, और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जब जन्नतों में जाके मिलेंगे तो फिर बताएंगे कि अल्लाह ताला के नबी, हमने बड़ी मोहब्बत से आपकी ज़िंदगी की किताब को पढ़ा था। हो सकता है कि इस चीज़ से हमारे कुछ दर्जों में इजाफा हो जाए, और उनसे मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला हमें कल उन्हीं लोगों में शामिल कर ले कि जो सिरात लजीन अनमत अलैहिम। तो अल्लाह ताला हम सबको इनाम याफ्ता लोगों में करे। दुरूद शरीफ पढ़िए आप भी, और मैं भी शुरू करती हूँ आपके लिए। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस्बअस फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك। حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ بہت سارے احسانات کیے، لیکن کسی احسان کا ذکر نہیں فرمایا اس رنگ میں کہ اس احسان کی قدر کرو، اس کو احسان مانو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت اور آپ کو ایک نبی بنا کے بھیجے جانے کی بات کو نہ صرف یہ کہ احسان کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ مومنوں پر ایک احسان تھا، اور اس کی قدر دانی کرنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ آج کل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پڑھ رہے ہیں رہبر کامل کتاب کی روشنی میں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ صرف یہی کتاب آپ نہیں کور کریں گے، جب آپ اس کتاب سے پورا سفر طے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سیرت کی بہت ساری کتابوں کے واقعات اور ان باتوں کو سیکھا، کیونکہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مختلف چیزیں جو اس میں نہیں ہیں وہ بھی دوں، تو لہٰذا آپ سب کے پاس نوٹ پیڈز بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو دیکھ کے کوئی بات جو آپ کو کتاب میں نہ لگے اور ذکر کی جائے تو آپ اس کو پھر اچھی طریقے سے نوٹ کر سکیں، بیچ میں آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ چلیے آج ہم پڑھیں گے وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے والی بات کو ریکیپ کر دیتی ہوں کہ اس وقت ہم جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کی حیثیت میں، یعنی آپ کا بچپن کیسا تھا، اور بچپن کے وہ واقعات سامنے رکھے جائیں گے کہ جس سے آپ کا ایک بیٹا ہونا ثابت ہو، اور ہم سب کے لیے یہ باب ایک تربیت اولاد کے سلسلے کا ایک असर भी होगा, एक ऐसी चीज होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपने बच्चों या बच्चों के अखलाक और किरदार को सामने रखा जाए, और छोटी छोटी चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हमें यहाँ मिलेगी उसको हम फिर अपने बच्चों को कहानियों की सूरत में सुना सकते हैं, ताकि वो हमें कुछ समझने की बजाय या हमारी बचपन की बातों को सुन के उस पर अमल करने की बजाय अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकें। तो पीछे जो बात अभी हम उस दिन कर चुके वो यही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, कबीला कुरैश से थे, आपका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, और आप बनी यानी इस्माइल से ताल्लुक़ रखते थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे जिन्होंने कबीला जुरहम की एक औरत से निकाह किया, और फिर उनके ज़रिए एक ऐसी नस्ल पैदा हुई, एक ऐसी नस्ल तैयार हुई कि जो सहराई माहौल में पली, जिनके अंदर फितरत का रंग झलकता था, और उन इसी वजह से वो उन तमाम असरात से पाक रहे जो उस वक्त भी इर्द गिर्द की तरक्की याफ्ता अकवाम के अंदर आ चुकी थी। हक गोई, जुर्रत और बहादुरी, आज़ादी और तमाम इंसानी आला अखलाक के जो किसी में हो सकते हैं वो उस कौम में मौजूद थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको चुना वहाँ के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो अब्दुल मुत्तलिब थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुश्त में से 60वें नंबर पे थे, यानी जैसे बाप के बाद बेटा, फिर बेटे के बाद पोता, फिर पड़पोता, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से अगर अब्दुल मुत्तलिब का नसब देखा जाए तो वो 60 नस्लें बनती हैं, बीच में 60 जनरेशन थी, और उसके अंदर यानी नबी सल्लम के जो आबा अजदाद थे उनके अंदर यानी एक नाम कुसई जो है वो बहुत काबिल जिक्र है। मैं चाहूँगी कि उनका जिक्र किया जाए क्योंकि इसी वजह से कुरैश को इज्जत मिली। कहते हैं कि कुसई से पहले यानी इनके बाप दादाओं में एक शख्स थे कुसई, उनसे पहले कुरैश के ख़ानदान मुंतशिर थे, लेकिन इन्होंने पहली दफ़ा लोगों को मक्का के अंदर यानी काबा के इर्द गिर्द जमा किया। एक सवाल पैदा हो सकता है ना कि इस वक्त नबी सल्लम जो मक्का में पैदा हुए, आप तसव्वुर में भी लाएंगे तो खाना काबा के इर्द गिर्द ही आबादी दिखती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, तो ये कारनामा जो था ये कुसई के दौर में हुआ था, उन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया। उस वक्त फिर एक छोटी सी मुनज्जम सी रियासत कायम हुई और कुरैश को हजाज में सियासी अहमियत हासिल हो गई, और अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो इसी दौर से इनकी तारीख का दौर दिखता है। इससे पहले ये काफ़िलों में बटे हुए लोग थे, खानाबदोशी की ज़िंदगी थी, जिसका जहाँ दिल चाहता था उधर जाके बसता था, लेकिन चूँकि खाना काबा हाजियों के लिए एक मरकज़ की हैसियत रखता था, तो इसके इर्द गिर्द जब ये लोग हुए तो लोगों ने इनको फिर एक कौम की हैसियत से पहचानना शुरू किया। फिर इसी तरह कुसई ने एक और काम किया था, और वो क्या था कि हाजियों की मेज़बानी का रिवाज उसने डाला था। आज भी जो लोग अल्लाह के घर में जाते हैं ज़यूफ़ुर रहमान बन के, वो देखते हैं कि सऊदी हुकूमत और वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनकी जो मेहमान नवाजी है वो वाकई काबिले ज़िक्र है और मोहब्बत का एहसास होता है। तो इस रस्म या इस तरीके का आगाज़ भी कुसई के दौर में हुआ था, उसने ऐसा काम शुरू किया कि जिसकी वजह से लोग हज के आने वाले जो लोग थे उनकी इस मोहब्बत करते, और फिर बाद में होते होते काबा की मतवलियत जो थी वो कुरैश के जिम्मा आ गई। इसी से फिर कुरैश को इज्जत मिली, इनको एक ऐसी हैसियत मिली कि वो दौर जब लोग बहुत जुल्म व सितम करते थे और किसी के ऊपर यानी किसी का कोई काबू नहीं था, काफिलों को लूटना, मारना और इस तरह के तमाम काम थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुरैश के काफिले जो थे उनको नहीं लूटा जाता था। क्यों? कि वो हरम के साथ एक ताल्लुक की होने की वजह से बहुत ज़्यादा महबूब थे। इन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लम की आमद की कुर्बत थी, यानी अभी आप नहीं आए थे दुनिया में, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम वाक्या हुआ, और वो वाक्या क्या था बल्कि उस वाक्य से भी पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको वो बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पैदा हुए तो इर्द गिर्द की हालत क्या थी, लोग किन पस्तियों का शिकार थे। यानी अरब के अंदर दीन और मजहब नाम की जो चीज़ थी वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई, लेकिन हुआ क्या कि वक्त के साथ साथ वहाँ बुत परस्ती शुरू हुई। आपके दिल में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आखिर वो घर जहाँ अल्लाह का नाम लेने के लिए जिसको बनाया गया, अव्वल बैत वो दिया लिन्नासी, कि जिसको पहला घर कहा गया अल्लाह का और अल्लाह के लिए बना, वहाँ बुत परस्ती कहाँ से आई और कैसे हुई? तो इसके बारे में अगर आप तारीख को देखें तो सबसे पहले जो पहला बुत खाना काबा में नसब किया गया वो अमर बिन लुखई था। अमर बिन लुखई, जैसे उमर लिखते हैं उसी तरह उमर के बाद आप वाव डाल देंगे तो वो अरबी जुबान में उमर बन जाता है। इस शख्स ने सबसे पहले एक बुत जो था वो ला के हरम में नसब किया, और कहाँ से लाया, ये मुल्क शाम गया, यानी सफर पे जाते थे तिजारती काफिलों के सूरत में, तो वहाँ से इसने यानी बुत प्रस्ती का आगाज किया। कौम इमालका का एक बुत था, सबसे पहला बुत जो हरम में नसब किया गया उसका नाम हुबुल था। इसीलिए आप देखते हैं तारीख में पढ़ेंगे भी कि हुबुल की बड़ी बात करते थे ये, और कहते हैं कि मुल्क शाम से लाया, कौम इमालका इसकी पुजारी थी और उन्होंने यानी इसको नसब किया। शुरू में लोग सारे हुबुल ही की इत्तबा करते थे, पैरवी करते थे, लेकिन फिर और ये उसने ख्याल कहाँ से दिया, कहने लगा कि देखो तुम खाली घर को पूजते हो, तुम तवाफ करते हो, लेकिन घर वाला ना हो तो दिल कैसे लगेगा, तो चलो है तो असल खुदा। तसव्वुर यही था कि असल खुदा वही है जो आसमानों पे है, लेकिन उसकी एक डमी, एक उसकी शक्ल बना के वो सामने रख दें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आज भी बाज लोग अपने शेख की, अपने मशाइख की या अपने बुजुर्गों की तस्वीरें सामने रख के इबादत करते हैं या दुआएं मांगते हैं। तो यही नजरिया उस दौर में भी हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अब उनको खुदा क्या मिला, उसके बाद जब झगड़ने की लड़ने की आदत तो थी ही, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हर कबीले ने अपना अलग बुत बना लिया। जब लड़ते, जिस कबीले से लड़ाई होती उसके बुत को निकाल के बाहर फेंक देते, जिससे सुलह होती उसके बुत को वहां जगह देते। इसी तरह एक वक्त आया कि वो खाना काबा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बुनियादों पे कायम था, वहां 313 बुत हो गए। लोग अपने अपने बुतों के नाम लेके वहां पुकारते, लेकिन रवादारी की वजह से किसी दूसरे को यानी बुरा ना कहते, अपने ही बुत को पुकारते। लिहाजा शिर्क पे होने के बावजूद भी उन्होंने यानी इस चीज को बर्दाश्त किया कि दूसरा जिस मजहब पे है या जिस दीन पे है हम उसके साथ मामला खराब ना करें। आज मुसलमान इस अदब को भी भूल गए कि एक ही दीन पे होने के बावजूद एक ही दीन के मुख्तलिफ रुख पेश करने वाली शख्सियात का नाम लेके एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने लगे। तो बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि इसके बुत की वजह से चूंकि ये हुआ, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने इसको जहन्नुम में देखा कि अपनी अंतड़ियों के बल चक्कर लगा रहा है। यानी इसको सजा क्यों ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसने बुराई की इब्तदा की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी कि जो किसी बार बुराई का जिक्र करेगा यानी उसकी आगाज करेगा तो बाद में हर वो शख्स जो इस काम को करेगा उसको उसका गुनाह मिलेगा। जैसे काबिल के बारे में आता है कि कत्ल, हर कत्ल का गुनाह उसके सर पे जाता है, तो लिहाजा इसी से फिर बुत परस्ती का आगाज हुआ और उसने ये सारा मामला किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मामला खत्म हुआ तो एक शख्स था जो मक्का से करीब रहता था, यानी करीब मक्का का तो नहीं था लेकिन दूर था, और उसका मामला क्या था कि उसने उसका नाम अबरहा था। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा तारीख में, अबरहा। अब अबरहा जो था इसने एक अपना काबा बनाया हुआ था, यानी ये जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम की सीरत से हम उस वक्त तक फायदा उठा नहीं सकते जब तक कि हम लोग उस दौर के हालात और उन सारी बातों को देख ना सकें। तो तो कहते हैं कि निजाशी यानी क्रिश्चियन बादशाह था, आपको पता है हबशा का बादशाह था, उसके दो गवर्नर थे, एक का नाम फरियाद था और दूसरे का अब्रहा था। कहते हैं कि इसी तरह से नसरानियत और यहूदियत इन इलाकों में फैल गई और अमर बिन लोहई के जरिए से मक्का में शिर्क आ गया, असल इस्लाम छुप गया। अब हुआ क्या कि जो दो गवर्नर थे आपस में इनकी अक्सर लड़ाई रहती थी और एक वक्त आया कि अब्रहा ने दूसरे गवर्नर को कत्ल करवा दिया। अब जब निजाशी को ये बात मालूम हुई कि मेरे ही नामजद करदा गवर्नर जो है वो आपस में लड़ने लगे, तो उसने कसम खाई। और कसम क्या खाई कि मैं यानी इनको मजा चखाऊंगा इस बात का और इस इतना बड़ा लश्कर लेके जाऊंगा यमन में कि मतलब इसको जलील करवा दूंगा। अब जब अब्रहा तक ये बातें पहुंची कि हबशा का जो बादशाह है वो हमारे लिए इस तरह के अजायम रखता है, तो बहुत ही ज्यादा यानी डरा और घबराया और अपने सर के बाल कहते हैं कटवा के, जैसे अपनी इज्जत को पाँव में डालने के इतना ख्याल से उसने वहां भेजे और यमन की कुछ मट्टी भेजी कि भाई हमें माफ कर दो, हम ऐसा अब नहीं करेंगे। तो लिहाजा कहते हैं कि फिर इस मौके पे अब्रहा ने उस बादशाह को खुश करने के लिए जो उस दौर में हबशा का बादशाह था, काबा के मुकाबले पर एक कुलैयस बनवाया और ऐलान कर दिया कि अब यहाँ भी हज हुआ करेगा, यानी कुछ ऐसी एक मजहबी मुकाबलाबाजी शुरू हो गई कि मुसलमान जमा होते हैं खाना काबा में हरम में हज करते हैं तो हम अपना एक कुलैसा बना लेते हैं, कलीसा कह लें कुलैसा कह लें या कोई भी जिस तरह आज के दौर में कोई चर्च होगा, मजहबी चीज होगी। अब होता क्या कि इस मामले में ये बात बन गई, शुरू हो गया काम। कुछ एक ऐसा कबीला था हरम में मक्का में रहने वाले कि जिनको इस चीज पे तहश आया कि इन्होंने अब एक हरम के मुकाबले पे ऐसा काम शुरू कर दिया, उन्होंने जाके रात को वहां गंदगी फैला दी, यानी जो उनका बनाया हुआ एक मंदिर था या जो चीज थी दीवारों पे गंदगी फैलाई और उनका ख्याल ये था कि ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अब लोग हमारी तरफ नहीं आएंगे इनकी तरफ जाएंगे। हालांकि ये शैतान की एक बहुत ही बड़ी साजिश होती है जिससे लोगों को आपस में लड़ाता है। बहरहाल जब अब्रहा ने ये देखा कि ये कबीले ने हमारे साथ ऐसा किया, तो इस गुस्से में फिर उसने कहा कि चलो अब मैं इनके काबा को उठाऊंगा। लिहाजा उसने हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लिया और सबसे बड़ा हाथी उसका नाम महमूद था, यानी वो उसके आगे था, साइस भी था यानी उठाने, यानी बहुत बड़ा लश्कर लेके गया, उनैस नाम का शख्स था जो उसके साथ था। अब कहते हैं कि लोगों ने रास्ते में उसको रोकने की कोशिश की जो मुख्तलिफ कबाइल थे जिनके नामों की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये हुआ क्या कि जब लोगों को पता चला कि अबरहा जो है ये खाना काबा को ढाने की नीयत से आ रहा है, तो लोग परेशान भी हुए, कई तरीके से मामला हुआ। इसने क्या किया अबरहा के लश्कर ने कि एक जगह डेरा डाला और सारे मवेशी और जो जानवर जो थे वो पकड़ लिए लोगों के। उन जानवरों में से कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लम के दादा थे उनके भी 200 ऊंट थे। अब जाहिर है कि ये बहुत चौड़े चकले खूबसूरत बारूद थे और शख्स थे और सरदार भी थे। इनको जब ये पता चला तो ये अब्रहा को मिलने के लिए गए कि मैं जाके उससे बात करता हूँ कि ऐसा मामला क्यों हुआ है। अब जब ये वहां गए तो इन्होंने उससे जाके बात की कि देखो तुमने मेरे ऊंट क्यों पकड़े हैं, तो इनको छोड़ दो। तो अब्रहा कहने लगा कि देखो मुझे तो तुम्हारी बड़ी मेरे दिल में इज्जत थी कि तुम सरदार हो, मैं तो ये सोचा था कि तुम मेरे से ये बात करोगे कि मैं खाना काबा को ना ढाऊं और तुम अपने जाती माल की सिफारिश करने लगे। तो कहते हैं कि उस पे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि ऊंट मेरे हैं, मैं इसका मुतालबा करता हूँ और घर रब का है, वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, यानी मुझे उसकी कोई हिफाजत नहीं है। लिहाजा कहते हैं कि अब्रहा ने उनके ऊँट छोड़ दिए इस शर्त पर कि मेरा रास्ता ना रोके, यानी मैं सिर्फ इस घर को ढाऊंगा, आप लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगा। लोगों ने उसका रास्ता छोड़ा, खुद पहाड़ों पर निकल गए, दुआएं मांगने लगे। कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने भी खाना काबा का तवाफ किया और फिर अलग हो गए कि अल्लाह ये तेरा घर है तो खुद अब अपना फैसला कर। फिर उसके बाद वही हुआ जो आप लोगों ने कई दफा पढ़ा कि जब इसने अपने काफले को लाने की कोशिश की तो जो बड़ा हाथी था आगे उसने आगे जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि वो जब उसको काबा की तरफ ले जाता तो रुक जाता और जब उसका रुख पीछे यमन की तरफ करता तो चलने लगता। और बहुत यानी इस तरह का मामला हुआ कि वादी महसर आज भी जब हाजी जाते हैं तो मुजदलफा के करीब एक वादी है, वादी महसर, वहां तक जब पहुंचे तो फिर आसमान से परिंदों के ऐसे झुंड आए कि उन्होंने थोड़ी ही देर में, कहते हैं कि वो पूरे लश्कर जो थे उसके, उनको खा दिया। इसी के बारे में सुरफील में अलम तरा कई फफाला रब्बू का बेसहाबिल फील, ये सूरत नाजिल हुई इसी में अब्रहा मारा गया। कहते हैं कि लोगों के गोश्त जो थे वो झड़ने लगे, और इस तरीके से अल्लाह ताला ने क्यामत तक के लिए ये चीज साबित की कि अल्लाह के घर की तरफ अगर कोई भी शख्स जो है पूरी नियत करेगा तो अल्लाह ताला खुद ही अपने घर की हिफाजत करेगा। और यही था वो साल कि जिस साल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। गोया कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की पैदाइश से लेके उनकी पैदाइश से पहले से ये बात बता दी कि अगर कोई शख्स भी अल्लाह के घर की तरफ पहली निगाह से देखेगा तो उसके साथ मामला क्या होगा, वो जो अब्रहा के साथ हुआ। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम की पैदाइश से पहले ही कितनी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जिक्र थे। कुछ चीजें अभी आज हमारे सबक में भी आएंगी, तो हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को किताब में, बाकी चीजें हम साथ साथ देखेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, फिर आपका हलीमा सादिया के पास दूध के लिए जाना, ये हम देख चुके। फिर हमने ये भी देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का असर सवारी पर क्या हुआ कि वो तेज भागने लगी, और इसके बाद आप पर बादलों का साया, सफा नंबर 25 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा सादिया फरमाती हैं, एक दिन आप अपनी रिजाई बहन शीमा के साथ खेलते खेलते दूर चले गए। मुझे खदशा हुआ कि कोई दरिंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं आपकी जुस्तजू में निकली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले तो मैंने शीमा को डांटा कि तू अपने भाई को इतनी दूर धूप में क्यों ले आई। शीमा ने कहा, अम्मा हमें धूप न लगी, मेरा भाई जिधर जाता था एक बादल का टुकड़ा सर पर साया किए हुए साथ साथ होता था। हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ऊपर देखा तो सचमुच एक बादल का टुकड़ा था जो आपके सर पर साया किए हुए था। ये देखकर मेरे दिल में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। ये थी आपके बचपन की एक और कहानी कि आपके ऊपर बादलों का साया रहता था। जो यतीम पैदा हुआ, जिसके बाप ने दुनिया में उसके आने से पहले ही अपने रब को जान दे दी, वो बच्चा कि जो दूर सहराओं में पल रहा है, अल्लाह ताला कैसे उसके साए का इंतजाम करता है। हमारे लिए इस बात के सुनने में क्या सबक है कि अल्लाह का नबी कि जिसके बचपन के अंदर अल्लाह ताला ऐसे बड़े बड़े मोजज़ात दिखाता है कि उसकी बरकतों से सवारी तेज चलने लगे, उनकी बरकतों से दूध आने लगे, एक माँ के जिस्म में बकरी दूध देने लगे, तो फिर अगर आज उन्हीं की उम्मत उन्हीं के उसवे हसना पे चलेगी तो क्या वो अल्लाह की रहमतों के साए में नहीं रहेगी? क्या फरिश्तों के साए पे नहीं रहेगी अगर उनकी जिंदगी के ऊपर गौर करती रहे और अमल करती रहे? हकीकत यह है कि हम अपने नबी को एक हीरो के तौर पे तो मानते हैं, लेकिन उनकी वो रूहानी बरकतें जो किसी भी कौम को मिल सकती हैं, आज हम मुसलमान उससे दूर हो चुके। तो लिहाजा अपने लिए दुआ क्या करनी है हमने कि अल्लाह आज भी हमें ऐसे उम्मती बना कि अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में जो बरकतें थी, हम भी आज वैसे ही बन के उन मुसलमानों जैसे अल्लाह तला की रहमतों को महसूस कर सकें। और ऐसा हकीकत में हुआ। कुछ लोग ऐसी चीजों का इनकार करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे ही धोखा होगा नजरों का, ये कभी एक बार हुआ होगा। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला तो इससे पहले ऐसे मौजज़े पेश कर चुके, जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तीह में थे तो वहां तो पूरी कौम के ऊपर बादल था, जहां तक चलते बादल भी चलता, जब रुकते तो बादल भी रुक जाता, सारा दिन बादल बन के छतरी बनता, अम्ब्रेला बन जाता, और रात को उसमें से लाइट निकलती, उनको रास्ता दिखाता, नाइट लैम्प बन जाता। तो उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? कोई कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता? बादल किसके हुक्म से चलते हैं? कौन उनको चलाता है? कौन उनको ठहराता है? वही रब जिसने दुनिया का सारा निजाम चलाया। तो लिहाजा ऐसी बातों पे कभी भी दिल में मलाल ना आने दें कि ऐसा नहीं हुआ होगा। उसके बाद एक और वाक्य है आपकी जिंदगी का, और वो क्या है, आपका पहला शरह सदर, यानी आपका सीना खोला गया था। शरह कहते हैं खोलने को और सदर कहते हैं सीने को। सदर क्या होता है, किसी भी मुल्क का सदर, प्रेसिडेंट, बड़ा अहम होता है, एक सानी, एक बड़ी इम्तियाजी हैसियत होती है। तो दिल की भी जिस्म में बहुत अहमियत है, बड़ी जगह है, इसी से ये लफ्ज़ है। हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जब आपने जरा होश संभाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे रजाई भाइयों के साथ, रजाई भाई किसको कहते हैं, जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया हो, या बहने भी, बकरियों का रेवड़ चराने चले जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त आपके रजाई भाई अब्दुल्ला दौड़े हुए आए और कहने लगे, अम्मा जल चलिए, हमारे मक्की भाई को दो आदमियों ने जंगल में शहीद कर डाला। ये वहशत असर खबर सुनते ही मेरी जान पर बन गई, बदख्वास होकर दौड़ी, मेरे साथ ही बनी साथ के लोग भी बेकरार होकर भागे। जब हम जंगल में पहुंचे तो दूर से देखा कि आप तंदुरुस्त मगर हैरान खड़े हैं। जब हम आप सल्लम के करीब पहुंचे तो आपसे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। मैंने दौड़कर आपको गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ? आपने फरमाया, दो शख्स आसमान से उतरकर मेरे पास आए जो सब रेशमी लिबास पहने हुए थे। इन दोनों ने मुझको लेकर आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। मेरा शिकम यानी पेट चाक करके यानी काटा करके निकाल कर धो दिया, खबर नहीं क्या किया। फिर इसी तरह सीने में रख कर टांके लगा दिए और मुझे उठाकर खुद चले गए। ये वाकया बहुत सारी सीरत की किताबों में मिलता है। तो नबी सल्लम का शरह सदर हुआ था दो बार, एक ये मौका था बचपन में और एक तब था जब आपको मेराज के सफर पे लेके जाना था। सवाल पैदा होता है कि इसकी जरूरत क्या थी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल में एक हिस्सा शैतान के लिए होता है। हर इंसान का जो दिल है, जो उसका जिस्म है, उसमें एक शैतान दौड़ता है और फरिश्ता भी उसके साथ होता है जो उसको नेकी का हुक्म देता है। अब जब दोनों में से जिसकी बात मान ली जाए वो मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम से जो बड़े बड़े काम करवाने थे अपने दीन के और हिफाजत करवानी थी इस शरीयत की क़यामत तक के लिए, तो आपके दिल से शैतान का हिस्सा धो डाला गया, आपके जिस्म के अंदर से, यानी उस चीज़ को निकाल दिया गया। और यही वजह है कि आप फिर जिंदगी में बचपन में भी उन चीज़ों की तरफ माइल नहीं हुए जिसकी तरफ अमूमन बच्चे होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं फिर वो वाकई काबिले तकलीद होते हैं कि जिनका बचपन भी उनके साथ, यानी मतलब उनका बचपन भी जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी लोगों के लिए एक फ़ायदा मंद हो सकता है कि जिसमें कोई बुराई और ऐसी चीज़ ना हो। फिर आप देखिए कि जब इंसान का सीना खुलता है, अब अल्लाह के नबी सल्लम का सीना खुला, फिर उसमें हिकमत डाली गई, आबे जमजम से उसको धोया गया, फिर उसको सिया गया, इसी तरह आज भी शरह सदर हो सकता है बचपन में। यानी यहाँ एक छोटी सी बात कहूंगी कि नबियों के साथ जो होता है वो एक उनका एक खासा होता है, लेकिन आम बच्चे, जैसे आज अगर हमारे घरों में रहने वाले छोटे बच्चे हैं, तो अगर उनके लिए माएँ समझती हैं क्या करें, किस तरीके से कि उनके दिलों से बुराई निकल जाए, तो आप इसी वाक्य को देखिए कि आपके सीन दिल को जमजम से पाक धोया गया, या आपके लिए वहां जन्नत का तश लाया गया और सब हुआ, तो क्या अगर आज हम अपने बच्चों को बचपन से ही जमजम के पानी की आदत डालें, जिस तरह हम मशरूब खरीदते हैं आज के दौर में, क्या हर मुसलमान के घर में जमजम नहीं होना चाहिए? क्या उसको पी के दुआएं मांगी गई नस्लों की इस्लाह की जरिया का जरिया नहीं बनेंगी? तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की जो खुराक है, जो उनकी बहुत छोटी उम्र में बहुत नेचुरल रहे, यानी यहाँ मैं ये चीज़ कहूँगी कि फितरत के साथ आप उनको जोड़ के रखें, कोशिश करें कि उनको आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रखें। जो भी चीज़ें जिसका जिक्र कुरान पाक में है, मसलन शहद है, दूध है, या जैसे जैतून है, फिर इसी तरह से तीन इंजीर का जिक्र है, तो अपने बच्चों की खुराक में इसको शामिल करें। बच्चों के इसलिए कह रही हूँ कि बचपन की बात है और बड़ों के लिए तो ऑफ कोर्स इसकी बहुत ज़रूरत है। बाद दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे चॉकलेट तो खुशी से खाते हैं लेकिन खजूर दें तो वो फेंक देते, क्यों? टेस्ट नहीं बना। बचपन में बच्चे ने पैदा होते ही कोक नहीं मांगी, लेकिन बच्चा क्यों कोक पीता है? जुबान भी जलती है। इसके बरक्स अगर आप किसी को दूध दें तो वो नहीं पीता। ये माँ है जो बच्चे का टेस्ट बदलती है। तो लिहाजा एक तो ये है कि आप लोग कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा ये कि दुआ मांगे कि अल्लाह जैसे तूने नबी सल्लम का सीना खोल दिया था बचपन में ही अपने दीन के लिए, हमारे बच्चों के सीने खोल दे। और उसके लिए फिर आपको ज्यादा से ज्यादा इनको दीन के करीब रखना पड़ेगा, फिर ही बात जो है वो बनेगी। और कहते हैं कि नबी सल्लम के सीने मुबारक पे ये निशान दिखते थे कि जिससे जैसे टांके लगे। इसे एक और चीज भी देखिए कि आज के दौर में सर्जरी होती है और उसके लिए टांके लगना और ये सब कुछ करना और कितने इंतजाम हैं, और फिर उसके बाद जो होता है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी कितने देर पहले से बता दी कि अल्लाह के नबी सल्लम का सीना ना सिर्फ ये कि कटा बल्कि उसके बाद सिल भी गया और कोई इन्फेक्शन नहीं हुई। तो असल में ये भी लोगों को एक पैगाम दिया गया कि बाद वाले वक्तों में इस तरह के काम भी होंगे। और आप देखेंगे कि आज जितनी साइंसी तरक्कियां हुई उस सब में इस्लाम का कहीं ना कहीं से इशारा जो है वो पहले से मिल जाता है। इसके बाद एक और वाकया जो आपकी जिंदगी में हुआ उसको देखते हैं। या ये बता दूं कि ये जो दो शख्स उतरे थे आसमान से, ये फरिश्ते थे, सब्ज रंग के लिबास उन्होंने पहने हुए थे। एक काहिन की पेशगोई, हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि ये आसेब का हलल मालूम होता है। यानी ये जिस तरह की बातें हैं, कभी बादलों का साया है या कभी इस तरह से, कभी इनको किसी ने मारने की कोशिश की और लोगों ने शोर मचा दिया कि कुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असल में इन पे कोई असेब हो चुका है। और आपको मालूम है कि जहाँ सच्चा दीन नहीं होता, जब असल कुरान नहीं पास होता, तो लोग इसी तरह के मामलात को अहमियत देते हैं। तो लिहाजा इसे किसी इलाज करने वाले काहिन को दिखाओ और इसका इलाज करो। यहाँ ये बता दूं कि उस दौर में अमूमन जो इलाज लोग करवाते थे वो काहिनों के पास, जैसे रूहानी इलाज जिसको आज के दौर में हम कहते हैं दम करवाना या कुछ इस किस्म का, क्योंकि जाहिर है कि उस तरह एडवांस डॉक्टर्स और मेडिसिन नहीं थी तो लोग काहिनों के पास जाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मर्ज तरक्की कर जाए और फिर इलाज में मुश्किल पड़े। हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी औरत थी, फिर औरत भी बदवी यानी देहाती इलाके में रहती थी, कब तक लोगों के कहने में ना आती, फौरन आपको एक काहिन के पास ले गई। जब काहिन ने नबी सल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो घबरा गया, और जिस वक्त आपकी जुबान फैज तर्जुमान से मस्कूरा वाक्या सुना तो सटपट आ गया। कौन सा वाक्या? जिसका ऊपर जिक्र आया, यानी सीने के खुलने का। तो परेशान हुआ, मरदूत ने फौरन आपका हाथ पकड़ लिया और चिल्ला उठा, दौड़ो दौड़ो अरब के लोगों, जल्दी करो, इस लड़के को कत्ल कर डालो वरना ये बड़ा हंगामा बर्पा करेगा, मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। तुम्हारे बुजुर्गों को बेअकल, माबूदों को पत्थर और दीन को बुरा कहेगा, एक नए खुदा को पूजने की रग़बत दिलाएगा। हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर लाल पीली हो गईं, यानी गुस्से में आ गईं, और बोली, तू गारत हो, खुदा तुझे हलाक करे, दूर हो मुझी, तूने हमसे कब की दुश्मनी लेनी थी। ये कहकर आपने काहिन का हाथ झटक दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमराह लेकर घर तशरीफ ले आईं। ये वाकया कोई मामूली वाकया न था। हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो पहले भी इस किस्म के कई वाकया देख चुकी थी, समझ गईं कि ये बच्चा कोई बुलंद इकबाल यानी इज्जत वाला होगा, इसलिए वो अब आपकी और भी ज्यादा खातर मदारत करने लगी। इस वाक्य में भी हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं अमल की, देखने की जरूरत है। पहली बात तो आप देखिए कि इंसान पे माहौल का असर आता है। चाहे हलीमा साहब जो थी वो एक फितरत के करीब खातून थी, लेकिन जब लोगों ने ये मशवरे दिए कि ये असेब है तो उन पे असर आया। इससे ये चीज पता चलती है कि इंसान को अपने इर्द गिर्द का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए, वरना क्या होता है कि बाज दफा फिर इंसान सुनी सुनाई बातों पे अमल करने लगता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दूसरी चीज जो आपको मालूम हुई इसमें वो क्या हुई कि राहिब की बात, कि जिस वक्त ये सारा मामला हुआ उस वक्त यानी ये सब कुछ हुआ कि उसने आपको यानी बताया, तो काहिनों को कैसे पता चलती हैं ये बातें? तो यहाँ थोड़ा सा जिक्र करूंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ही सुनी हुई एक बात का। हदीस है, आपने फरमाया कि पहले दौर में क्या होता था कि शयातीन जो हैं वो आसमानों से गैब की खबरें सुनने के लिए एक दूसरे के कंधों पे सवार हो के खड़े होते, और फिर आसमान से जब अल्लाह ताला फरिश्तों को कोई बात की खबर देते तो वो सुन लिया करते थे, और उसके बाद वो बातें नीचे आके काहिनों को बताते कि जो यानी फॉर्चून टेलर्स कह लीजिए, किस्मत का हाल बताने वाले, हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपकी शख्स दिस दिस, इस तरह की बातें। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला शुरू किया तो अब इस तरह से हिफाजत की, और सितारों का एक मकसद भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि रजूमल शयातीन, ये शैतानों को रजम करने का जरिए। अब क्या होता है कि जब कोई शैतान एक बात सुनने के लिए दूसरे के जाता है तो आसमान से शोला पड़ता है, तो ऊपर वाला जिन जलता है, वो जलने से पहले जो बात सुनी होती है वो अपने नीचे वाले के कान में कह देता है, फिर वो उसके नीचे जलते, इस तरह जलने से पहले बात ऊपर से नीचे कन्वर्ट होती है। अब बात कितनी बदल चुकी होगी, कहाँ तक गई होगी, और वो आखिरी बात जो सुनी सुनाई होती है वो फिर जाके वो जिन्नात काहिनों को बताते थे, क्योंकि काहिन जो है वो फिर चिल्ले काट के जिन्नों को काबू करते हैं और अपने जिन्नात से ये बातें सुनते हैं। अब वो उसमें एक सच में 100 झूठ मिला के उनको बताते हैं, लिहाजा उनकी कही भी कोई बात सच भी हो जाती, क्योंकि थोड़ी सच लेकिन बहुत सारी झूठ होती। तो इस तरीके से कभी कभी अगर कोई बात कोई कह दे और वो हो जाए तो उसके अंदर ये हकीकत होती है कि उन तक ये बात होती है। अब ये काहिन जो था, इसको जब नबी सल्लम की सारी जो बातें थी और आपकी निशानियां मालूम हुई, कुछ पहली किताबों में भी ऐसी चीजें वो पढ़ते थे सुनते थे, तो उसको समझ आ गई कि ये वही नबी है जिसका वादा यहूद और नसारा से किया गया था कि वो आएगा और वो अरब से होगा। और अब देखिए कि इसमें वो सारी वो बातें कह रहा है कि जो बातें वाकई बात में हुई, तो इससे क्या पता चलता है कि उनके जो वो लोग अपने दीन के मामले में सच्चे थे, उनको वाकई पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, इसके बावजूद उन्होंने छुटला दिया। फिर इस तरह एक और चीज भी काबिले गौर है, और वो क्या है कि हलीमा सादिया डरी नहीं बल्कि मजबूती से मुकाबला किया। इससे क्या पता चलता है कि ऐसी तोहम प्रस्ताना बातें जो हैं उसको इंसान अगर मतलब बहुत ज्यादा अहमियत ना दे, डरे ना, तो वो लोग कुछ इंसान का नुकसान नहीं करते। फिर एक और आखिरी वक्त चीज भी बहुत प्यारी है कि हलीमा सादिया ने इतनी यानी मुश्किल आ रही है ना एक बच्चे को पालने की वजह से, उस पर इस तरह के प्रॉब्लम है, इसके बावजूद आपको छोड़ा नहीं बल्कि आपकी इज्जत को पहचाना। ये है असल में एक मार्फत वाले बंदे का काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बड़े काम करवाने होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसके साथ रहने वाले उसकी वजह से आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, थोड़ी अनयूजुअल जिंदगी शुरू हो जाती है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो उन चीज़ों को नेमत समझते हैं कि अगर हमारे साथ रहने वाला अगर किसी अच्छे काम के लिए है और उसकी वजह से हमें थोड़ी मुश्किल भी आ रही है, तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा ऑनर है कि ये एक अच्छा काम कर रहा है या ये अच्छा काम करेगा मुस्तकबिल में। लेकिन जो लोग कमजोर ईमान वाले होते हैं वो उन चीजों को छोड़ देते हैं। बस अगर आप देखिए कि आजकल आप इल्म हासिल कर रहे हैं, अब आपकी इस इल्मी सरगर्मियों से कुछ ना कुछ तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों पे मुश्किलात आएंगी ना, किसी वक्त हो सकता है कि उनको खाना आगे से पीछे करना पड़े या कुछ और चीजें जिंदगी में एडजस्ट होंगी, तो कुछ घर वाले तो वाकई अकलमंद है, वो खुश होंगे कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, अभी नहीं तो 15 मिनट बाद खाना मिल जाएगा। वो खुशी महसूस करेंगे कि ये जो इल्म हासिल करेंगी इसकी बरकत हमारे घरों में आएगी, हमारे बच्चे अच्छे संवरेंगे, वो अच्छी तरबियत उनकी होगी। और कुछ लोग हैं वो इस पे यानी अगर वो इसकी कदर नहीं करते तो, लेकिन ये कि हमारे लिए मामला क्या कि हमने उसको हिकमत अमली के साथ उस मामले को टैकल करना है और ऐसी चीजों को मुश्किल नहीं बनाना। फिर आगे देखिए रजाई माँ की खिदमत। नबी सल्लम भी अम्मा हलीमा से बहुत उन्स और मोहब्बत फरमाया करते थे, और बावजूद कम सनी यानी छोटी उम्र होने के इनकी हर मुमकिन खिदमत के लिए तैयार रहते थे। बच्चों की सआदत यही है कि वो बुजुर्गों का अदब और एहतराम मलहूज रखें, यानी उसको खातिर में लाएं, उनका एहतराम करें और इनकी खिदमत से पहलू तही ना करें यानी अवॉइड ना करें। चुनाचे जब नबी सल्लम ने देखा कि अम्मा गरीब है और आप बकरियां चराने के लिए तैयार हो गए, और अम्मा हलीमा के कहने मना करने के बावजूद उनकी बकरियां चराते थे, हालांकि इस वक्त आपकी उम्र मुबारक ज्यादा से ज्यादा 5 साल की थी। सोचिए जरा हमारे 5 साल के बच्चे क्या करते हैं, वो तो हमें ही अपने पीछे लगा के रखते हैं कि ये तो लाड करने के वक्त है। इससे भी क्या पता चलता है कि इतनी छोटी उम्र में ही बच्चों को शऊर दे देना चाहिए, हालात जैसे भी हों घर के, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं तसव्वुर देना चाहिए कि तुम हर चीज जो कहोगे वो पूरी की जाएगी और तुम बड़े हैं। वो घर में खुश्की गर्मी सर्दी होती रहती है, जैसे हालात हों बच्चों से मदद भी ली जा सकती है और ये चीज फिर बाद में फायदेमंद होती है। जरा तो सोचे 5 साल का बच्चा आज के दौर में मेरा ख्याल है मॉन्टिसरी में जाता होगा या प्रेप में जाता होगा, सारा दिन कार्टून बनाने और कार्टून देखने, क्या यही तो उन बच्चों की जिंदगी का मकसद तो नहीं? याद रखिए कि जिन्होंने बड़े बोझ उठाने होते हैं ना, वो बहुत छोटी उम्र से फिर थोड़ा थोड़ा बोझ उठाना शुरू कर देते हैं। अगर आज माओ के दिल में ये तमन्नाएं हैं ना कि हमारे बच्चे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा हों और आपकी सुन्नतों पे अमल करें, तो बचपन से 5 साल तो बहुत बात की बात है, ये तो पहले दिन का सफर है। उनको इस चीज का आदी कर दे कि वो आपके लिए मुश्किल का बायस नहीं बने बल्कि आसानी का। मैं देखती हूँ कि आज के दौर में जो तरबियत के अंदाज हैं, बाद में माएँ शर्मिंदा होती हैं उस पर, लेकिन असल वजह बाज दफा माँ खुद ही बनती है। बच्चों को ये एहसास ही दिया जाता है कि तुम सिर्फ खाने पीने और खेलने कूदने के लिए हो, हालांकि अच्छे तरीके से उनको अपने कामों के साथ साथ शामिल करना चाहिए। बेऐब बचपन। हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह शरीर न थे, ना बच्चों की तरह गालियां देते थे, ना फजूल खेल कूद में रहते थे, ना लड़ते झगड़ते थे, ना गाने सुनते थे, ना गाते थे ना गाना सुनते थे, और ना ही कभी ऐसी मजलिस में जाना पसंद करते थे, हालांकि ये चीजें इस वक्त अरब के बच्चों की घुट्टी में दाखिल थी, यानी उनको आदत थी। आप सल्लम के दावे नबूवत के बाद आपकी रजाई माँ हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और इनके शौहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा और एक रजाई भाई और रजाई बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इनका ये ईमान भी आपके इन्हीं पाकीज़ा अखलाक और नेक अतवार का नतीजा था जो उन्होंने बचपन के इब्तदाई जमाने में आप में मुशाहिदा किए थे, जिसकी वजह से वो आपके मद्दाख यानी आपकी तारीफ करने वाले हो गए और आपके दावे नबूवत पर बिला तामल कहते हैं बगैर कुछ देर किए, बगैर सोचे ईमान ले आए थे। यहाँ आप देखिए कि हमारे लिए बात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जिस घर में गुजरा, कोई उनको कुरान की आयतें नहीं सुनाई, कोई उनको डराया नहीं जन्नत की बात तो जहन्नम की, लेकिन आपके आला किरदार की बदौलत जब बाद में आपने इस्लाम का इजहार किया तो लोग फौरन मुसलमान हो गए। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारी दीन की दावत में शामिल हो जाएं और हमारे इस सफर में हमारा साथ दें और हमें तस्लीम करें, तो हमें अपना अखलाक अच्छा करना होगा, हमारा किरदार अच्छा हो कि हमारी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो कि हमारे साथ रहने वाले सिर्फ इस बात से ही बात को कबूल कर लें कि ये तुमने कहा है, तुम्हारा किरदार इस चीज का गवाह है, यकीनन ये बात भी अच्छी होगी। जब हमारे अपने किरदार अच्छे नहीं होते ना, हम अपने कॉल और फेल में तजाद का शिकार होते हैं, तो बाज दफा दीन बुरा बनता है और हम कहते हैं ये दीन की वजह से लड़ाई हुई, लेकिन हकीकत में ये है कि वो हमारी अपनी बदअखलाकी का एक रिएक्शन होता है, तो हमने अपने लिए कोशिश करनी है कि ऐसा मामला ना हो। यहाँ आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मामला है कि गाना नहीं सुनते थे, तो इसके बारे में किताबों में आता है कि अरब उस वक्त बहुत आदी थे इन चीजों के, गाने बजाने और इन चीजों के, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इसका मिलान नहीं था। एक दफा क्या हुआ कि कुछ किसी के घर शादी का प्रोग्राम था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अच्छा चलो मैं आज जाके देखता हूँ ये लोग करते क्या है, यानी रात की का प्रोग्राम था कोई ऐसा शाम का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, लेकिन जो ही उस शादी का वक्त करीब आया आपको ऊंघ आई और आप सो गए और जब आंख खुली तो वो प्रोग्राम जो था वो खत्म हो चुका था। इस एक से ज्यादा बार ऐसा हुआ और उसके बाद फिर आप समझ गए कि अल्लाह ताला मुझे नहीं सुनवाना चाहता। तो इससे भी मैंने देखा कि अल्लाह ताला खुद ही बचा लेता है इसको, इस्मत पैगंबर या इस्मत अम्बिया कहते हैं कि अल्लाह उनको बचा लेता है गुनाहों से, कुर्बात से बचाता है। अगर हकीकत ये है कि हम भी अपने बच्चों के लिए ये पसंद करें ना कि शुरू से उनका मिजाज ही ना ये बनाए, देखिए कि एक छोटा सा बच्चा और वो कुरान की आवाज़ सुनता है तो एकदम चलने लगता है, घूमने लगता है, आपके कमरे में आने जाता है क्योंकि उसको कुरान की आवाज सुनाई देती है। और अगर उस कमरे में से गाने की आवाज आएगी तो वो फिर भी आएगा, ऐसे ऐसे उसको क्या अच्छा लगेगा जो वो सुनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गाने ना सुने या म्यूजिक ना सुने या उनके, तो बचपन से आदत ना डालें। आज के दौर में देखा गया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको माँ बाप सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को बिठा देते हैं वहाँ, कुछ अपने वक्त ना देने के खमियाजे को भुगतने के लिए उनको वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स और ऐसी चीजें देते हैं चाहे हैं बच्चों के लिए। देखिए, आप फितरत से हटा रहे हैं उस बच्चे को, आप उसको ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो बाद में उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। मसलन आप देखिए कि बच्चा दुनिया में आया, उसको कैसे पता है कि कार्टून देखे, मैं मिसाल दूंगी आपको, उसको कैसे पता चलता है कि म्यूजिक सुने तो उसको देख के मजा आता है। आपने बचपन से उसको दिया, उसका टेस्ट बना दिया, डिवेलप किया। जैसे बच्चा पैदा होते दूध पीता है ना, तो उसको दूध की आदत होती है। यकीनन अगर दूध की बजाय बचपन में किसी और चीज की आदत डाली जाए तो बच्चा उसका आदी हो जाएगा। इस तरह जो लोग मिर्ची खाते हैं, आप देखते हैं कि उनके बच्चे मिर्ची वाला खाना खा रहे होते हैं, कुछ नहीं उनको होता। जो नहीं खाते वो बच्चा खाएगा तो उसका रंग सुरख हो जाएगा मुंह। तो अगर शुरू दिन से कोशिश करें, मैंने इस बच्चे को खराब नहीं करना, मैंने इसको ना, अब देख इसकी फितरत को मसख नहीं करना। अब देखते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं ना, तो शुरू में बिल्कुल फजर के करीब उठने लगते हैं, सहरियों के वक्त में। असल में वो आपको उठाते हैं कि उठिए तहज्जुद पढ़िए, माँ गहरी नींद सो रही है, वो अजान के साथ उठ जाएगा, कसम से आएगा। क्यों? वो आपको उठाना चाहता है। रात को बच्चे जल्दी सोना चाहते हैं, क्यों? आपको आदत डालें। बाज लोग अपनी रूटीन ना खराब करने के लिए बच्चों को देर तक जगाते हैं ताकि ये सुबह देर तक सोएं और फिर हम मजे से सोते रहें। बाज लोगों को मैंने देखा है बच्चों को नींद के शरबत पिलाती हैं, फिर नरगन पिला रही, क्यों? ये देर तक सोता रहे, ये हमें उठा देता है। फितरत आपने मसख की, जब तक बच्चा नहीं होता ना से आप भी खेल कूद लें। जो ही एक बच्चा घर में आ गया, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अब खत्म, अब उसके साथ चलिए। वो सुबह उठता है, आप भी उठिए। फजर के बाद सोने ना दें बच्चे को बचपन से। फिर आप देखिए कि बच्चे सोते बचपन में जब होते हैं तो बहुत रोते हैं ना, जो ही बच्चा रोता है माँ उसके मुंह को दूध लगा देती है। कभी ना करें, थोड़ा रोने दें, दो तीन दफा रोएगा उसकी एक्सरसाइज होगी। आज साइंस कहती है तो हम फौरन मान जाते हैं। आपको पता है ये जो बच्चा रोता है, पाँव मारता है, तो उसके जिस्म में उसकी एक्सरसाइज होती है, ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, वो हरकत करते हैं। और जिन बच्चों को आप टाइट खूब पैक करके बांध देते हैं चीजों में, अपनी चीजों में, और बच्चा जरा रोया, दूध दे दिया, अब वो ना वो हरकत कर रहा है, दूध पी रहा है, वो जिस्म में रह रहा है, नतीजा क्या निकला कि उसकी बॉडी जो है वो मोटी होने लगती है, लेकिन 100 किस्म की बीमारियां अंदर आती हैं। तो बच्चों को फितरत पे रखें, आप कुरान की आदत डालिए, आप ऐसी नेचर दिखाएं उनको। अगर आप समझते हैं, वैसे मैं तो समझती हूँ कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती टाइम वेस्ट करने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस कल्चर को कम करने की जरूरत है। वरना क्या होगा, ऐसी चीजों के नाते से वो म्यूजिक के भी आदी हो चुके होते हैं, वो वल्गर लिबास देखने के भी आदी हो चुके होते हैं और शोर के भी आदी हो चुके होते हैं। नतीजा क्या आता है, जो ही आप उनको कुरान की महफिल में लाएंगे या आप कुरान खोल के बैठेंगे, वो रोने लगेगा। माँ ना कुरान पढ़ती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा ठीक ठाक था, माँ ने हाथ खड़े किए नमाज के लिए, तो बच्चा रोने लग गया। कभी आपने देखा कुछ लोग मस्जिदों में जाते रोते, क्यों? शैतान अंदर आया होता है, शैतान इतना मजबूत हो गया इस तरह की चीजें देखने सुनने से, कुरान की आवाज पे उनको होता है। शुरू सुनकर जब आप नमाज पढ़े, बिल्कुल बच्चे को पास लेटाए, वो एक दिन का बच्चा है ना, आप बिल्कुल उसके सामने नमाज पढ़े, आप कोई कुरान पढ़े, देखें सुने, उसको पास बिठाए, यकीन करें फायदा होगा। किसी ने मेरे से शेयर किया, यानी कल भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो प्रेग्नेंट थी और पूरी प्रेगनेंसी में भी यानी सुनती रही, क्लासेस में आती हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आ रही है, तो बेबी हो गया अब छोटा सा। यकीन करें इतना कूल और काम बच्चा है कि अल्लाह ताला उसको नजरे बद से बचाए, बिल्कुल माँ को तंग नहीं करता। फिर क्या हुआ कि मैंने वो यहाँ मेरे पास आई मिलने के लिए, तो बेबी देखा बड़ा प्यारा है, तो किसी वजह से उसकी कोई मुश्किल थी तो चूं चूं कर रहा था थोड़ा। तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं छोटे बच्चे ना, कि जो बिल्कुल न्यू बोर्न है, मेरा दिल करता है कि मैं उनसे बातें करूँ ना, पूछूं अल्लाह से मिल के आए हो, अल्लाह ताला कैसे हैं, क्या है, इस तरह का दिल चाहता है। अच्छा क्या हुआ कि वो रो रहा था ना, तो उसको कुछ चीजें देखनी थी, तो मैंने कहा तुम देखो बच्चा मुझे दे दो, मैंने उसको लिया। अच्छा मैं बातें साथ कर रही थी, यकीन करें चंद मिनट हुए तो बच्चा सो गया। अब मैं नहीं इस बात को कहती, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कहने लगी ये आपकी आवाज सुनने का आदी है। इसने शुरू से सुना है, ये बिल्कुल नहीं कर रहा और ये किसी और के पास नहीं जाता, लेकिन आपके पास आ गया और बोला भी नहीं और खामोश है। तो मैं सोच में पड़ गई कि वाकई ये चंद दिन का बच्चा है, इसको अगर मेरी आवाज की पहचान है या ये बात सुनता है तो फिर किसी और आवाज की आदत क्यों नहीं पड़ सकती। अगर आज इसको कुरान की आवाज की नाते से अगर उसको आदत हुई, तो अगर आप बचपन से गाना सुना दें, तो मैंने देखे ऐसे भी बच्चे कि जब तक आप उनको टीवी के आगे ना बिठाएं वो सोते ही नहीं। बास माएं फखर से कहती हैं मेरा बच्चा जब तक टीवी के आगे नहीं बैठता सोता नहीं है। बास माओ को मैंने देखा है कि बच्चे को टेढ़ा सा करके बिठा के सामने तस्वीर एक टीवी खोल देती हैं कि आती जाती तस्वीरों को देखेगा। नहीं, इनकी फितरत, इनकी मासूमियत को मसख ना करें, यकीन करें ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैंने कहा तुम इसको जल्दी से बड़ा अल्लाह करे हो तुम इसको पढ़ाने के लिए रख दो, देखना ये वो बातें जो तुमने अपनी प्रेगनेंसी में जो सूरतें पढ़ी हैं या सीखा है ये बहुत जल्दी सीखेगा। ये पहला वाकया नहीं, एक और हमारी स्टूडेंट भी थी आज पहले बैच में थी, तो वो प्रेगनेंसी पूरे इधर आती रही अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में बिल्कुल उन्होंने छोड़ा और उसके बाद यानी उनका बेबी पैदा हुआ और जिस तरह, तो वो खुद कहती हैं कि मेरा ये बच्चा दूसरे सारे बच्चों से फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्क महसूस होता है और काफी दूसरे बच्चों के बाद पैदा हुआ यानी बीच में काफी गैप था, तो वो कहती हैं कि ये बच्चा भी इतना यानी प्यारा, उसका नाम भी उन्होंने मोहसिन रखा। तो मैंने कहा अल्लाह इसको वाकई मोहसिन बना दे, क्योंकि उन दिनों हम सूरत या यूसुफ पढ़ते थे तो उसमें बहुत ही बार आता है कि इन्ना मिनल मुहसिनीन, हजरत यूसुफ की ये सिफत थी। तो बहरहाल बात यह है कि इन बच्चों पे रहम करें, अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक बने तो फिर इनको साथ लेके चलें। यकीन करें अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर लें तो हम दीन का ज्यादा काम कर सकते हैं। आज वक्त क्यों नहीं मिलते, हम इन्हीं नाजबरदारियों में रहते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, नबी सल्लम का एक और वाक्य आपकी जिंदगी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्यामे तफूलियत, तफूलियत तिफल से है, बचपन, बचपन इसका लफ्ज है, चाइल्डहुड का एक और अजीबो गरीब वाक्या है और वो दिलचस्पी से खाली नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल बदवी जिंदगी यानी देहात में रहने वाली जिंदगी बसर करने के बाद अपनी वालदा के पास शहर में आ गए, तो थोड़े ही अरसे के बाद आपकी वालदा का साया भी आपके सर से उठ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पास रख लिया। अब्दुल मुत्तलिब को भी आपके पाकीज़ा अखलाक की वजह से आपसे बहुत मोहब्बत थी, हालांकि इनके और भी बहुत से पोते थे, मगर वो आपको बहुत ही ज्यादा चाहते थे और बैतुल्ला की उस मसनद पर जिस पर आपके सिवा और कोई बैठ नहीं सकता था, अगरचे वो इसका कितना ही अजीज क्यों ना हो, मगर वो नबी सल्लम को इस पर बैठने से मना ना करता था, बल्कि कई दफा ऐसा हुआ कि आपको अपने कंधों पर उठाकर काबा का तवाफ कराया करता था। एक बार जब आपकी उम्र मुबारक 7 साल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखनी आ गईं, यानी आंखों में कुछ तकलीफ हुई, बहुत इलाज किए गए मगर किसी दवा से आराम ना हुआ। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा कि औकास बाजार के करीब एक राहिब तबीब रहता है। राहिब कौन होते थे? जो क्रिश्चियन होते हैं लेकिन इबादत के लिए जैसे जंगलों में और बैठ के रहबानियत के नाम पे अलग हो जाते हैं। अगर आप अपने अजीज को इसके पास ले जाएं तो इसके इलाज से इनकी आंखें जरूर अच्छी हो जाएंगी। अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और दूसरे ही दिन नबी सल्लम को अपने साथ लेकर वहां चल दिए। रात को वो वहां पहुंचे, राहिब का दरवाजा बंद था। आसपास के रहने वालों से पूछा राहिब कहाँ है, उन्होंने जवाब दिया है तो यहीं मगर अब दरवाजा नहीं खोलेगा क्योंकि 1 साल मतवातर मकान के अंदर बंद रहता है और बाहर नहीं आता। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि राहिब के मकान में जलजला आ गया, दीवारें थरथराईं, छत लर्जी और राहिब बेताब होकर बाहर की तरफ भागा और हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। जब इसकी निगाह नबी सल्लम पर पड़ी तो आपके पास आ गया और अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा क्या ये साहबजादा आप ही का है, आप इसको यहाँ क्यों लाए? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ ये मेरा पोता है, इसकी आंखें दुखती हैं और सुना है कि तुम आंखों का बहुत अच्छा इलाज करते हो। राहिब कहने लगा वाय आपकी अकल पर, यानी जैसे हम कहते हैं ना अफसोस आपकी अकल पर, अब तबीब को मरीज के पास, मुकद्दस को गुनाहगार के पास और शिफाए आलम को मरीज मुजस्म के पास लाए हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे। अब्दुल मुत्तलिब में अपने इबादत खाने में बैठा इबादत कर रहा था कि यकायक सारा मकान लरज़ गया। अगर मैं बाहर ना आता तो खतरा था कि दबकर मर जाता। तुम्हारा ये साहबजादा बड़े जाहो जलाल वाला और बुलंद मर्तबा होगा। ये नबी आखिरुज़्ज़मान है। इसके चेहरे से नूर टपक रहा है। इसे यहूदियों से बचाओ। वो कमबख्त अगर इसे देख लेंगे तो इसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। जाओ इसका मुंह शिफा के खजाने का सरचश्मा है। इसी का लौबे दहन इसकी आंखों पर लगा दो और कुदरत का करिश्मा देखो। अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि वापस आकर मैंने आप ही का लुआब आपकी आंखों पर लगा दिया। सुबह को जो देखा तो आपकी आंखें बहुत अच्छी हो चुकी थीं। मिसल मशहूर है कि हो नहार बरवा के चिकने चिकने पात। नबी सल्लम ने बड़े होकर नबूवत का दर्जा पाना था, इसीलिए कुदरत ने बचपन ही से आप में सलाहियत का मादा पैदा कर दिया। वो आदत जिनका जिक्र ऊपर हुआ और अजीबो गरीब हालात के अलावा और भी बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जो आपके बचपन के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर चूँकि आपका बचपन हमारे लिए इसी तरह का एक नमूना है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे शोबे हमारे लिए लाहे अमल हैं, इसलिए अब हम सिर्फ वही बातें नकल करते हैं जो एक सादतमंद और नेक बेटे में होनी चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बात करें, थोड़ी सी बात करेंगे इस वाक्य पे भी। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, यानी जब आप पैदा हुए उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई कि जो लोगों के लिए एक निशानी बन गई कि ये बच्चा नबी होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि राहिब के पास जब आप गए तो उसका जो हुजरा था वो थरथराने लगा और जलजले की कैफियत हुई। इसी तरह कहते हैं कि किसरा उस वक्त की एक सुपर पावर थी, उसके महल के अंदर किंगरे, जैसे आप देखते हैं ना बुर्ज बनाए होते हैं, बहुत किंगरा समझते होंगे आप लोग, जैसे कर्व से होते हैं, यानी एक नुमाया हिस्सा होता है बिल्डिंग में। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त कहते हैं कि उसके 14 किंगरे गिर के टूट गए। वहां कितनी दूर वो बैठा हुआ है और उसके महल में ये जलजला आ गया। इसी तरह कहते हैं कि मजूसी जो थे आग की पूजा कर रहे थे तो उनका आतिशकदा जो था वो बुझ गया, क्योंकि मजूसियों का अकीदा क्या है कि आग को बुझने नहीं देते। अगर उनकी आग बुझ जाए तो गोया कि उनका खुदा मर गया, तो वो बुझने नहीं देते। कई साल से वो आग चल रही थी और अचानक जो है वो मतलब आग बुझ गई। इसी तरह कहते हैं कि बुखैरा जो था उनका एक ऐसा मतलब एक और बातिल अकीदा था, तो उनका बुखैरा जो था वो डूब गया। ये सारी निशानियां थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। कहते हैं कि इस मजूसी जो बादशाह था किसरा का जो बादशाह था, इसके इस 14 किंगरों के टूटने पर या महल में दराड़ें पड़ी तो उससे उसके जो काहिन, तो उन्होंने बताया कि आपके पास सिर्फ 14 बादशाह गुजरेंगे और फिर आपका इकतदार खत्म हो जाएगा। और कहते हैं कि बाकी अगले 4 साल में 10 बादशाह मर गए। और एक वक्त था कि फिर वहां पे भी इस्लाम जो था वो आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लम की ये जो चीजें थी ये लोगों को पहले से तैयार कर रही थी कि ये बच्चा जो है ये बहुत बड़ा बनेगा। मैं यहाँ एक ही बात कहूंगी जो पढ़ते हुए मेरे दिल में आ रही थी कि नबी सल्लम अभी बाहर थे और क्रिश्चियन यानी नसारा राहिब के मकान में जलजला आ गया, कांपने लगी, उसकी बुनियादें हिली। आज उसी नबी के उम्मती हजारों गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हैं। किसी गिरजे में कोई इर्तियाज नहीं आता, किसी के अकायद में कोई तब्दीली नहीं आती। वजह क्या है? आज वो ईमान नहीं, आज उस नबी की वो तरीकों पे अमल नहीं कि जिसकी वजह से वाकई गैर मुस्लिम जो है वो कांपने लगे। जब भी सच्चा इस्लाम आता है तो उसका नतीजा जरूर ये निकलता है कि गैर मुस्लिम कौमें बेचैन होने लगती हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हम मुसलमान अपने अंदर वो ईमान पैदा कर लें कि जिसके नतीजे में वाकई हमारी मौजूदगी किसी भी जगह पे एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सके। अब आगे कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें नबी सल्लम की एक अच्छे बेटे होने के नाते से क्या चीज़ें थी, और ये खास तौर पे आपको फायदेमंद होंगी अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में। पहला टॉपिक है वालदैन का अदब और एहतराम। आप चूंकि दुनिया के तमाम सईद बेटों में सबसे बड़े भड़कर सईद, सईद कहते हैं खुशकिस्मत को, लकी थे, बेटे थे। आपका दस्तूरुल अमल ये था, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 है। माँ बाप जो कुछ भी चाहें कह लें, मगर तुम इनको जवाब देना या गुस्ताही से पेश आना तो रहा, दरकुनार इन्हें उफ तक न कहो। चुनाचे आपने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया, फरमाया कि तुम्हें माँ बाप की इज्जत और खिदमत तुम्हें माँ की इज्जत और खिदमत बाप से 3 गुना ज्यादा करनी चाहिए, इसलिए कि इसने तुम्हारी तरबियत और परवरिश में बाप से ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की है, बस इसका हक के खिदमत भी तुम पर ज्यादा है। बाप तो बहसियत साहिब इक्तदार होने के हुक्मन आपसे खिदमत ले सकता है, मगर वो बेचारी जो मुंह में जुबान भी नहीं रखती और दुनिया में हकीर और जलील समझी जाती है, किस तरह तुमसे खिदमत ले सकती है? बस अकलन और अखलाकन तुम्हारा फर्ज है कि माँ की खातरदारी बाप से ज्यादा मलहूज रखो। और इस मानी में फरमाया कि बाप इंसान की जन्नत या जहन्नम माँ के कदमों के नीचे है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप देखिए कि बचपन में हकीकी माँ बाप का इंतकाल हो गया, बाप तो थे नहीं, माँ भी 6 साल की उम्र में छोड़ गई, लेकिन आप अपनी रजाई माँ के साथ कैसे करते थे उसकी आप मिसाल आगे देखेंगे। अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक औरत आई, नबी सल्लम ने इसे अपनी चादर बिछा दी और वो इस पर बैठ गई। जब वो चली गई तो हमने आपसे पूछा, नबी सल्लम ये कौन थी? आपने फरमाया, ये मेरी रजाई माँ थी। सुभान अल्लाह, ये इहतराम रजाई माँ का है, हकीकी माँ होती तो इन्हें मालूम नहीं मालूम किस कदर इहतराम होता और कितनी इज्जत अफजाई होती। बाज़ लोग कहते हैं कि नबी सल्लम की माँ का बचपन में इंतकाल होने की वजह भी ये थी कि अगर माँ जिंदा होती तो उनकी खिदमत और उनकी देखभाल की वजह से कार्य नबूवत में खलल आता, कि आप फिर इतना उनकी ख्याल रखते कि हो सकता है कि बाज दफा जो एक उम्मत की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे थी उसको निभाना मुश्किल हो जाता। और वल्लाहु आलम। उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम। उम्मे ऐमन जो आपके वालिद सरदार अब्दुल्ला की लौंडी थी और आपको वरसे में मिली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी भी बहुत इज्जत किया करते थे और इनके मकान पर जाया करते थे और फरमाया करते थे, उम्मी बादा उम्मी, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद, यानी सगी माँ के बाद दूसरी माँ उम्मे ऐमन थी। रिजाई माँ की सिफारिश, एक दफा कबीला बनु साद के बहुत से मर्द और औरतें जंग में कैदी होकर मुसलमानों के हाथ आए, जब हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला तो इनको छुड़ाने के लिए आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई माँ को देखकर इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और पूछा, किस तरह तशरीफ लाई? हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बेटा आपने अपनी खालाओं और फुफियों को कैद कर लिया, ये क्या किया? यानी इशारा था रजाई खालाओं और रजाई फुफियों की तरफ। आपने उसी वक्त अपने और कुरैश के हिस्से के कैदियों को रहा कर दिया और जोहर के वक्त बाकी मुसलमानों से भी सिफारिश की कि मेरी अम्मा खलीमा सादिया इन कैदियों की रहाई के लिए आई हैं, मैंने कुरैश का हिस्सा तो आजाद कर दिया है, अब तुमसे सिफारिश करता हूँ कि तुम भी मेरी माँ की कौम को आजाद कर दो। चुनाचे आपके इरशाद पर सब कैदी रहा कर दिए गए। इस तरह जब कभी भी हलीमा रजी अल्लाह तआला आपके पास आती, आप इनका बहुत एहतराम फरमाते, मेरी माँ कहकर उठ खड़े होते और अपने ऊपर की चादर उतार कर नीचे बिछा देते। आपको अपनी हकीकी माँ से इससे भी ज्यादा मोहब्बत थी, मगर अफसोस कि वो बचपन ही में आपकी आंखों से ओझल हो गई। आपकी उम्र मुबारक 6 साल की थी जब वो मुकामे अबवा पर फौत हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ सफर में थे। अब यहाँ देखिए कि रजाई माँ, रजाई जो है ना रजात से है, ये वो रजाई ना समझिए जो हमारे यहाँ उर्दू में बोली जाती है कोल्ड के मानों में या लिहाफ के लिए, रजात, रजात कहते हैं दूध पिलाना। तो आप देखिए कि एक रजाई माँ की इतनी कदर करना कौन करता है आज के दौर में, अपनी पूरी उनके खानदान के जो लोग थे उनको आजाद कर दिया। फिर यहाँ एक और चीज हम देखने की थी कि साथियों से इजाजत ली। हालांकि नबी सल्लम करना चाहते तो कौन रोक सकता था, लेकिन आपकी आजजी का ये आलम था कि आपने खुद से ये फैसला नहीं किया, जिसके अंदर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे, और दूसरों ने आपकी मोहब्बत में यानी एक लम्हा भी नहीं सोचा कि बज ना करें, बल्कि फौरन इस चीज के लिए तैयार हो गए। हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि वाकई हमें भी अपनी माओ का एहतराम करना, क्या वाकई हम अपनी माओ का एहतराम करते हैं, क्या वाकई हम अपनी माओ को वो इज्जत या वो जगह देते हैं। बाज दफा आप देखिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि उनको कौन सा इल्म है, कौन सा दीन का पता है, तो यहाँ मिसाल मौजूद है कि वो तो बदवी औरत थी, कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितनी मोहब्बत करते थे और उनका एहतराम करते थे। बल्कि अपनी बहन के लिए भी उन्होंने ऐसे ही किया। शीमा इनकी दूध शरीक बहन थी, बचपन में इनको खिलाया करती थी और आपके लाड देखती थी, तो आपने उनको भी एक दफा यानी वो आई और उनकी बड़ी इज्जत और तकरीम की और उनके कहने पे कबीले के लोग आजाद किए। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम रवादारी का दीन है, सिर्फ लोगों को हराम और हलाल के फतवे ही नहीं देता, बल्कि लोगों को इंसानी जज्बात की हुरमत का भी ख्याल दिलाता है। इसी तरह आपका अपनी हकीकी माँ से मोहब्बत का एक वाक्य है। जमाने नबूवत में जब कभी आपको इधर से गुजरने का इत्तेफाक होता तो आप अपनी वालदा की कब्र पर तशरीफ ले जाते। एक दफा बहुत से सहाबे कराम भी आपके साथ थे, आप अपनी माँ की कब्र देखकर रो पड़े। आपके रोने में ऐसा दर्द और रिक्कत थी कि सहाबे कराम ताब न ला सके और वो भी आंसू भर लाए। बल्कि बाज़ जगह आता है कि लोग कहते हैं कि हमने कभी नबी सल्लम को इतना रोते हुए नहीं देखा जब अपनी माँ की कब्र पे गए और वहाँ रोए, और लेकिन आपको मना कर दिया गया था कि आप उनकी बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, सिर्फ ज़ियारत की लेकिन दुआ नहीं कर सके। तो यहाँ से भी एक दर्द महसूस करने की बात है कि अल्लाह का नबी जो दुनिया के लिए एक रहमत बन के आया, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो दुआ भी नहीं कर सका। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि मैं 6 साल का था जब मेरी वालदा फौत हुई, वो मेरे वालिद की कब्र देखने के लिए यसरब, यसरब क्या है, मदीना का पुराना नाम, तशरीफ लाई। उम्मे ऐमन साथ थी, एक अनीसा नामी लड़की थी जो हमारे साथ खेला करती थी। फुलां किले के ऊपर एक परिंदा आ बैठा करता था जिसे हम उड़ाया करते थे, फुलां मकाम में हम ठहरते थे, इस जगह मेरी वालदा की कब्र थी, और फुलां तालाब यानी बनू अदी के करीब जहाँ बनू अदी कबीला रहता था, इसमें मैं तैरता था। इस तरह आपने बचपन के बहुत से हालात सुनाए जिससे आपके गैर मामूली हाफ़िज़े पर रोशनी पड़ती है, और मालूम होता है कि बचपन ही में आपकी तबीयत में बहुत यानी उफ्ताद थी कि आपने फन तैराकी की जरूरत को महसूस करके तैरना सीख लिया। ऐसी छोटी उम्र में ऐसी उमंगों का पैदा होना दिल में आपकी बुलंद हिम्मती पर दलील करता है। उफ्ताद कहते हैं जैसे आज के दौर में आप कहते हैं ना एक्साइटमेंट। आप देखिए कि इस वाक्य में भी कितनी बातें हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जो छोटे छोटे काम किए थे वो आपको याद थे। आज हमें अपनी बचपन की बातें याद है नहीं। फिर दूसरी बातें देखिए कि आम इंसानों वाले काम वो भी करते थे, ये नहीं मतलब दीनदार होने का कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिसमें कोई गुनाह भी नहीं। बस एक्सरसाइज अगर कोई करता है तो कोई बुरी बात नहीं, आप कहें कि एक्सरसाइज करना कोई बुराई है, या जैसे यहाँ फन तैराकी की बात हुई तो बच्चों को ऐसी स्किल्स भी सिखानी चाहिए क्योंकि इससे भी इंसान की जिस्मानी सलाहियतें जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। काबिले तकलीद बचपन, जहाँ तक हम आपके ज़माने तफूलियत यानी बचपन पर नज़र दौड़ाते हैं, आप हमें एक नहायत ही शरीफ उत्तबा, मतीन, संजीदा, फरमाबरदार, सच बोलने वाले, आला हिम्मत और सादतमंद बेटे की हैसियत में नजर आते हैं। जिस माहौल में आपने परवरिश पाई, अगर इसे देखा जाए तो ये अमर कतन मुहाल और नामुमकिन नजर आता है कि इनके असरात के मातहत एक ऐसा खुशकिस्मत बेटा पैदा हो। बच्चों के लिए कामिल नमूना, यानी अब ये वो चीज़ है कि जो नबी सल्लम की बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होने की सूरत में, क्योंकि नबी सल्लम तो पूरी इंसानियत के लिए थे ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस उम्र के बाद आपकी ज़िंदगी पे मैं अमल करूं, बच्चे बचपन में इनमें अमल करें और अपने बच्चों को हम ये छोटी छोटी चीज़ें बता सकते हैं। बचपन में ही आपका यतीम हो जाना और हालत यतीमी में जबकि आपकी तालीम तरबियत का कोई जामिन ना हो, यानी उसकी कोई जमानत देने वाला ना हो, अपने आप को अखलाक रजीला यानी बुरे अखलाक से बचाना और اخلاق فاضلہ یعنی فاضل، بہت فضیلت والے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا، پھر اپنی عمر کا بہت حصہ بکریوں اور اونٹوں کے چرواہوں اور صحرا کے بدوؤں کے ساتھ گزارنا، اور ان اجڑ اور وحشیوں میں رہ کر فرشتوں کی سی پاکیزہ زندگی بسر کرنا صرف آپ اور آپ ہی کا کام تھا، جو اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ ابنائے عالم، عالم کے بیٹے ابن سے کے لیے ایک کامل نمونہ بنے۔ لڑکے جب آپ کو تفریحی مشغلوں میں شریک ہونے کے لیے بلاتے تو جواب میں آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت ضائع بہت زیادہ نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں۔ آپ کے بچپن کے زمانے میں کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی کہ جو آپ کے ہم عمروں کی بے لطفی یا شکایت کا باعث ہو۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ہمارے چھوٹے بچے کتنی کمپلینس کرتے ہیں، اس نے مارا، اس نے لے لیا، اس نے چھینا، تو آپ کے بچپن میں بھی کسی کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی یا جس سے آپ کے سرپرست اور بزرگ ناخوش ہوئے ہوں۔ ذرا ایسے لڑکوں کی حالت پر غور کیجئے جن کو قسمت نے ماں باپ کے دامن پرورش سے محروم کر دیا ہو، عموماً ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کی عدم توجہی یعنی ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحرائی خود رو پودوں کی طرح آزادی کی بدنمائیوں کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ لیکن بخلاف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ ایسی پاکیزگی اور مکارم اخلاق کے ساتھ بسر ہوتا ہے کہ جس کی مثال عرب جیسے ملک میں نہایت دشوار اور مشکل ہے۔ کتنی سچی بات ہے۔ عموماً دیکھیے کہ جب بچے نہیں رہتے، ماں باپ جن کے فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں اگر، تو وہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ ڈانٹتے نہیں کہ خام خواہ یہ روئے گا، اس کا دل دکھے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محرومیوں کے باوجود بھی آپ کا بچپن کتنا خوبصورت تھا اور کیسے آپ آگے آئے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک نشانی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے جس کے ماں باپ نہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں، تو اس کو اس طرح کی یعنی محرومیوں کا شکار نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کے ساتھ ترس کھانا رحم، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی ہمت اور جوش دلایا جائے کہ تم دوسروں سے زیادہ اچھے ہو۔ اب دیکھیے کہ بعض عموماً لوگ یتیمی کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اگر یتیمی کوئی عیب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب کے ساتھ تھے۔ پھر بعض دفعہ کسی کا باپ مر جائے یا ماں، تو لوگ ایسے جملے بولتے ہیں کہ اب اس کو کون پالے گا، اس کا کون دیکھے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، لیکن سوچئے کہ ساری دنیا کے ماں باپ ہی مل جائے نا، اپنے کسی بچے کو ایک خیر نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا مقام دیا ہم سب کے دیکھنے کے لیے ہے۔ آخری ٹاپک ہیں دو چھوٹے سے، اس کو پورا کرتے، ابو طالب کی شہادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کے چوتھے سرپرست تھے اور آپ کے تمام حالات سے پورے پورے واقف تھے، آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق حسب ذیل الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ لم ارا منہ کذبتم ولا دخکم ولا جاہلیتم ولا وقفم مع الصبیان، میں نے کبھی بچپن میں آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، نہ کبھی ہنسی مذاق کرتے دیکھا یعنی اوور قسم کی، نہ کبھی کوئی جاہلانہ بات آپ سے سرزد ہوئی اور نہ کوئی آپ نے بازاری اور آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ گھر کی لونڈی کی شہادت۔ اس کے علاوہ تاریخی کتابوں میں ابو طالب کی ایک لونڈی کی شہادت بھی ہمیں ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے تعلق رکھتی ہے، اور گھر کی یہ لونڈی اپنے کئی بار کے تجربے کے بعد یہ گواہی دیتی ہیں، آپ نے گھر میں کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جب کبھی آپ کو کھانا دیا جاتا تو کھا لیتے اور کبھی کسی کھانے پر کوئی اعتراض یا نقص نہ نکالتے۔ آپ کی خودداری اور بے غرضی کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں بچپن ہی سے حد درجے کا وقار، ضبط نفس، حیا اور سوال سے نفرت تھی۔ آپ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی مانگ کر چیز نہیں لیتے تھے، اس سے بڑھ کر کے خودداری اور ضبط نفس کا کیا اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ الغرض اگر کوئی شخص راستی کا طالب ہو اور آپ کی اس زندگی پر غور کرے تو اسے آپ کی یہی زندگی، آپ کی صداقت اور راست بازی کی ایک زبردست دلیل نظر آئے گی۔ کاش ہمارے بچے بھی اپنے اندر آپ جیسے عادات و خصائل پیدا کر کے حقیقی معنوں میں قوم کا قیمتی سرمایہ بنے۔ बहुत पूरा हो चुका है, इस पे कुछ कम तबसरा करना चाह रही थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में इस सबक पे छोटी सी बात करके फिर हम अगला सबक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको इस चीज़ से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।